Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जब तक हम खुद से सुलह नहीं कर लेते, तब तक हम दुनिया से सुलह नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हम दोस्तों अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपनी खुद के अंदर की कई बार अच्छाइयों से और कई बार बुराइयों से। इन दोनों के बीच की जंग जो है, ये तो हमेशा चलती रहेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को ध्यान देकर सुने कि आपकी एक एक संकल्प सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो आप महसूस करेंगे कि कई सारी आपकी जो गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो सेल्फ एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच, प्लेजर।
डॉक्टर साहब, हम आज टारगेट कर रहे हैं 40 टू 60 एज ग्रुप के हमारे जो भाई बहने हैं उनको। हम कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो कहीं पीछे छूट गई हैं, या कई ऐसी छोटी छोटी टिप्स हम उनको देने की कोशिश करेंगे जिनसे उनकी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद सॉल्व हो जाए। आपके हिसाब से इस एज ग्रुप में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है?
देखिए, अगर हम सिर्फ एक एज ग्रुप की बात करें तो अब 40 टू 60 है, जिसको कि मिडिल एज या अधेड़ावस्था कहा जाता
जी।
है। लेकिन अगर हम 50 साल पहले को देखें तो ये एंड ऑफ लाइफ समझा जाता था।
बिल्कुल।
60 साल की उम्र तक पहुंच जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी।
True।
बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस होती थी। और उसका कारण भी ये था कि एवरेज एज जो थी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 75 साल पहले भारत की 32-33 साल थी।
अच्छा
जी, 1947 में एवरेज एज, जिस उम्र तक जब कोई पैदा होता है तो एवरेज एज जब तक वो जिएगा वो होती थी 32।
पर हम तो जानते थे कि उस समय 100-100 साल लोग जीते थे।
बहुत कम।
अच्छा,
जो लोग बाकी सब बाधाओं को पार करके 40-45 तक पहुंच जाते थे, फिर वो जीते रहते थे। क्योंकि बचपन में पहले बहुत सारे बच्चे अलग अलग कारणों से, बीमारियों से, मैल न्यूट्रिशन से, फिर उसके बाद यूथ में भी टीबी से, मलेरिया से, मैल न्यूट्रिशन से, एक्सीडेंट से मरते थे।
ओके।
लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मेडिकल साइंसेस बेटर हुई और उसके बाद लोगों की उम्र बढ़नी शुरू हुई, आज हम 68 के करीब, 66 टू 68 के बीच में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहा जाता है वो है। तो उस उम्र के हिसाब से अगर देखें तो हाँ, 40-45 एक तरह से मिड लाइफ समझी जाती है।
बिल्कुल।
ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी सोच में मिड लाइफ जो है वो कब शुरू हुई, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपकी उम्र क्या है वो कम इम्पोर्टेंट है। तो ये एक तरह से पड़ाव है। ये पड़ाव वो है जहाँ पे कि शुरू की जो ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट जद्दोजहद हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, यूथ की, जो कि एक रिश्ते को बनाना और फिर उस रिश्ते को चलाना, काम को पाना और काम में मसरूफ हो जाना, ये होता था।
बिल्कुल।
जब वो थोड़ी देर तक चलता रहता है तो फिर एक स्टेज आती है जिसको हम प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो मतलब आप सेट है मोर और लेस, अपने काम में भी, अपने रिश्ते में भी। लेकिन यहाँ पर कई नई चीज़ें शुरू होती हैं।
ओके।
आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब वो जो बच्चे एडोलेसेंट में जा रहे हैं, उनके साथ आज के समय में कई तरह के इश्यूज पैदा होने शुरू होते हैं।
ट्रू।
और अगर आप और बच्चे महत्वाकांक्षी हैं तो बच्चे कहीं और पढ़ना चाहेंगे, अच्छे से अच्छी जगह पर जाना चाहेंगे, तो कई बार वो घर भी छोड़ के जाते हैं।
बिल्कुल।
या अगर सेम सिटी में भी हैं तो 10 से 12 घंटे एवरेज वो घर से बाहर रहते हैं। तो एक तरह से वो बच्चे तो हुए घर में, लेकिन आपके पास नहीं है। हर समय आपके साथ नहीं है।
True.
तो कहीं ना कहीं जो पहले फोकस था वो इस उम्र में आने के बाद बदलना शुरू हो जाता। इसी उम्र में लोगों को कुछ तरह की प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म की, चाहे वो वेट की है, और अगर वेट बढ़ता है खासतौर पे तो उसके बाद बॉडी इमेज की, जिसको कहते हैं महिलाओं में खासतौर पे, पुरुषों में भी, कि वो दिखने में उतने अच्छे नहीं लग रहे जितने पहले थे, या उनका वेट क्योंकि बढ़ गया इसलिए वो अट्रैक्टिव नहीं है, प्लस साथ ही साथ उनके साथ जुड़ी हुई जो सेहत के इश्यूज हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेज, वो भी इसी समय में ज़्यादा शुरू होती हैं। डिप्रेशन इसी समय में ज़्यादा होते हैं। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो वो इस स्टेज में पीक पर पहुँचता है। आज के समाज में जहाँ पे कि अल्कोहल का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कई लोग उसके एडिक्ट एटलीस्ट रोज लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनकी सेहत पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन उनके मन पे भी बहुत असर पड़ता है, उनके संबंधों पे भी बहुत असर पड़ता है, और कई बार उनके काम पे भी बहुत असर पड़ता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो देखते हैं कि बच्चे एक तरह से जैसे घर से धीरे धीरे हट रहे हैं, पेरेंट्स ज़्यादा जो हैं वो बीमार होने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि वो भी 70s में है। जो व्यक्ति 40 और 50 के बीच में है उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी 60 के ऊपर ही हैं, तो वो 70-75 में उनका भी कई बार ज़्यादा बीमारी या फिर देहांत होना, उस चीज़ के साथ डील करना, प्लस विमेन के अंदर यही समय है जबकि मीनोपॉज होता है यानी मेंसेस बंद हो जाते हैं, तो उससे भी जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, खासतौर पे कि बॉडी में काफ़ी चेंजेस उनके आते हैं, या कई बार इसी दौरान में डिप्रेशन में बहुत जाते हैं जबकि मीनोपॉज होने वाला होता है। तो ये एक ऐसा समय है जब चैलेंजेस कई तरह के छुपे रूप में ज़रूर आते हैं, रिश्तों में भी आते हैं, काम पे भी आते हैं, क्योंकि कई बार आज के समय में ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से ग्रोथ हो रही है
जी
इकोनॉमी की, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन मिड लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं। कोई भी व्यक्ति, हाईली स्किल्ड व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसे दे के नई जॉब नहीं देने चाहते, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज बंद होती हैं या काम बंद होते हैं तो उसकी वजह से वो व्यक्ति जो कि बिल्कुल सेट था, अचानक अब उसके पास काम नहीं
है। ट्रू।
और ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा सेविंग्स लेके नहीं चलते, तो इकोनॉमिक जो जुड़े हुए मुद्दे हैं इस समय में वो भी बहुत उभर के आते हैं। प्लस जीवन का मतलब क्या है, आप अभी एक स्टेज पर पहुँच गए तो मन में उस तरह के प्रश्न आने शुरू होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो खैर बचपन से ही आने चाहिए, उनका आंसर हमें ढूंढना चाहिए, लेकिन इस उम्र में ज़्यादा आने शुरू होते हैं कि जीवन का मतलब क्या है, जीवन के मूल्य क्या है, क्या हमने पाया जीवन में, क्या गलतियाँ हुई, क्या चीज़ मैं आगे जाके बेटर कर सकता हूँ, जिसको कहते हैं एंड ऑफ लाइफ में मेरे पास क्या रहेगा। और ख़ासतौर पर अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तो उनको देख के कई बार मन में आता है कि क्या यही जीवन है, आप पैदा हुए, पढ़े, कमाया, बच्चे हुए और उसके बाद आप भी कुछ नहीं, तो क्या है जो कि चलता है लंबे समय तक। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जो इस उम्र में पुरुषों को, महिलाओं को महसूस होनी शुरू होती है।
डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल आता है कि भले ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ हम जूझ रहे होते हैं इस एज ग्रुप में, लेकिन कहीं ना कहीं एक सैटिस्फैक्शन भी आता है कुछ लोगों के अंदर में, मैं सबकी बात नहीं कर रही, जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरह से जिया है वो लोग बहुत ही सैटिस्फाइड महसूस करते हैं। यही वो एज ग्रुप है जब हम चीज़ों को देखते हैं कि हमने क्या गलत किया, हमने क्या अच्छा किया, एनालाइज करने के लिए हम जाते हैं। ऐसे में कई बार हम भगवान को भी उसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं कि आपकी वजह से शायद मेरा ये चीज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो बहुत मिन्नतें मांगी थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बट ये पॉइंट आता है जहाँ पर हम ईश्वर को ब्लेम करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि उनको सडनली हम नोटिस करने लगते हैं इस एज ग्रुप में। पहले यंगस्टर्स वगैरह के लिए तो लाइफ जी रहे हैं, एक दिन की बात है, लेकिन जब रियल ये वाला एज ग्रुप आता है तब हम ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कुछ लोग उनकी बुराई करते हैं, कुछ लोग उनको थैंक यू बोलते हैं। आपके हिसाब से विच इज़ द राइट एज ग्रुप जिसे हम लिटरली अपने आप को स्ट्रेंथन फील करें भगवान के साथ के साथ?
देखिए, आपने जो बात कही कि बहुत इस एज ग्रुप में या इस पड़ाव पर लोग प्रॉब्लम्स के साथ जीते हैं, मैं कहूँगा इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स नहीं।
ओके
ये रोड मैप्स हैं एक तरह से, हम सब के ज़िंदगी से अगर सीख लें कि ये चीज़ें आने वाली हैं। अब एक तरीका देखने का कि ओ माय गॉड, मुझे इनसे जूझना पड़ेगा, और दूसरा है कि अच्छा ये भी आएंगी तो मैं पहले से प्लान करता हूँ, बड़ा मजा आएगा।
ओके,
सो आई थिंक कहीं अगर हम ये समझ के कि ये कुछ मुद्दे उठेंगे और मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, और आप मेंटली प्रिपेयर्ड उसमें बाहरी रूप से नहीं हो सकते, कि उस समय पे मेरे साथ कौन होंगे, कितने पैसे चाहिए होंगे, क्या क्या कॉन्टेक्ट चाहिए होंगे, उस समय मेरी अंदर की जो शक्तियां हैं, मेरे अंदर के जो गुण हैं, और जो मेरे दूसरों के साथ संबंध अच्छे हैं, वो काम में आने। तो अगर हम उनको स्ट्रेंथन करते हैं तो ये पड़ाव भी आएंगे, निकल जाएंगे, खेल होगा। जहाँ तक रही बात भगवान के साथ एक रिश्ते की, देखिए मैं कई बार सोचता हूँ और डिस्कस भी करता हूँ कुछ लोगों से कि क्या 700 करोड़ लोगों के लिए भगवान ने एक अलग अलग सिस्टम खोला हुआ है, और हर सेकंड में जो जो हमने किया उसका हिसाब वो रख रहा है, और फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं, आज जो है जो भी हो जाए, अनायिका को चाहे जितना भी वो पूजा कर ले, मैंने ये चीज़ नहीं देनी क्योंकि मैं उससे गुस्से हूँ। हाँ, अब देश को बिना कारण के ही दे दूंगा। मेरे ख्याल से भगवान इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसने वाला।
True.
शायद उसका रोल भी नहीं है।
Correct.
जो जो चीज़ें हम नहीं कर पाए या नहीं मिल पाई, उनके लिए हम भगवान को दोष दे देते हैं।
बिल्कुल।
और जो मिल जाती हैं
उसको थैंक यू बोल देते हैं, कई बार भूल
कुछ बार, लेकिन ज्यादा बार कहते हैं तो मेरे एफर्ट से हुआ।
हाँ, ट्रू।
देखिए, जो हो रहा है उसमें मेरा सबसे बड़ा रोल है। हाँ, अगर एक बहुत पावरफुल शक्ति को साथ में लेकर मैं चल रहा हूँ तो वो शक्ति मुझे अपने जीवन में आगे जाने के लिए या सही समय पर सही कार्य करने के लिए प्रेरणा दे सकती
है,
और वहाँ पे उनका थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से हाँ, जब मैं थैंक यू कहता हूँ उन्हें शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ग्रैटिट्यूड की वजह से मैं उस चीज़ को किस तरह से स्वाभाविक रूप से सिर्फ अपनी नहीं सबकी मदद के लिए यूज़ कर सकूँ, उसके लिए मुझे मदद मिलती। तो अगर उस भाव से हम चलते हैं तो ये तो बचपन से सिखानी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है।
बिल्कुल।
इस टेक्नोलॉजी को अगर हम सूक्ष्म रूप से हर किसी कार्य में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो आपने कहा सही एज क्या है, मेरे ख्याल से इस उम्र में अगर पेरेंट्स खुद कंफर्टेबल हैं और खुद यूज़ किया है तो अपने मॉडलिंग के द्वारा, अपने जो दिखता है बच्चों को उसके द्वारा, कहते नहीं, कहना अगर कभी डिस्कशन हो तो ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अदरवाइज जो मैं कर रहा हूँ उसका जो मुझे फ़ायदा हो रहा है वो जब बच्चे देखते हैं तो फिर वो उसको फॉलो करते हैं।
एग्जैक्टली।
तो वो अगर हम कर सकें तो मूल्यांकन जो है हर स्थिति का वो साथ साथ होता रहेगा, और अगर साथ साथ होता रहेगा तो जब इश्यूज़ आएंगे उन इश्यूज़ के साथ प्रॉपरली डील करके हम आगे बढ़ेंगे। तो एक तरह से जो ये बात उठती है इस उम्र में कि अब कोई और चैलेंज नहीं रहा, अब और कोई गोल नहीं रहा, वो गोल बदलते जाते हैं, इम्प्रूव होते जाते हैं, और धीरे धीरे क्योंकि रोज़ हम उसे जी रहे हैं उस कारण से वो मुझे भी और मेरे आसपास वालों को भी कुछ ना कुछ सुख दे के जाते हैं।
डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि इस एज ग्रुप में खास करके बच्चों की शादी हो रही होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि चलो इसकी शादी हो जाए, ये आखिरी बच्चा है मेरा अभी फिलहाल, उसकी शादी हो जाए तो मैं फिर गंगा नहा लूँगा। कई बार कहते हैं कि इस एज ग्रुप में खास करके देखा गया है, वो कहते हैं कि सारी जिम्मेवारियाँ मेरी पूरी हो जाएंगी, फिर मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा। ये सोच कुछ दिनों तक ही रहती है, जैसे ही इस चीज़ से भी वो सैचुरेट हो जाते हैं तब वो डिप्रेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में मेरे हिसाब से कोई भी तरह का गोल ना हो तो आप दिशाहीन हो जाते हैं। ऐसे में उन लोगों को आपकी क्या राय है कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट को कभी जाने ना दे, भले ही उनकी जिम्मेवारियाँ ख़त्म हो गई, वो और भी कोई ऐसी जिम्मेवारियाँ ले सकते हैं जिससे वो लाइफ भर एक्टिव रहे, ये कैसे पॉसिबल है?
देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ।
ओके।
क्योंकि पहली बात, जब हम ये कहते हैं कि ये बच्चा मेरी जिम्मेवारी है, तो हम उसे एक बोझ के रूप में दिखा रहे हैं।
ट्रू।
कि जिस दिन मेरे सर से बोझ हटेगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा।
ट्रू।
तो वो बच्चे के लिए, जिसको कि हम एक तरह से बोझ की बात कर रहे हैं, उसकी सेहत के लिए कम से कम ठीक नहीं है।
बिल्कुल।
हाँ, मैं जिस तरह से अपने जीवन में और कार्य करता हूँ, ये एक ऐसा कार्य है जो करने में मुझे खुशी मिलेगी, और वो होने के बाद मैंने जो अपने जीवन में उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है, वो हो जाएगा। बट एक्चुअली अगर आप देखें तो किसी भी शादी में 3-5-6 महीने के पीरियड होता है जिसमें कि हम ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, उससे पहले तो सिर्फ सोच रहे होते हैं ना, होगा नहीं होगा। एक्चुअली अगर हमारा सोचने का ढंग वही है ना, तो हम फ्री नहीं होते हैं शादी के बाद भी। फिर नेक्स्ट स्टेज ये आती है कि वो खुश है कि नहीं है, उसके हस्बैंड ने या वाइफ ने उसको ऐसा क्यों कह दिया, आज उनका झगड़ा क्यों हो गया। हम कई बार अपने क्लिनिक्स में भी पेरेंट्स को इसी उधेड़ बुन में देखते हैं कि अभी ये ठीक होगा कि नहीं होगा, अब 6 महीने हो गए शादी और चलेगी कि नहीं चलेगी, बच्चा हो जाए तब कुछ ठीक होगा, फिर बच्चा हो जाता है तो बच्चा पलेगा कि नहीं, फिर बच्चे का स्कूल होगा कि नहीं, तो वो इस चीज़ में खोए रहते हैं। एक तरह से उसको अगर इंजॉय करके उसमें शामिल रहते हैं, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उस चीज़ के ऊपर अटके रहें, उसमें उनको भी कष्ट है, परिवार को भी कष्ट है। इंसिडेंटली आमतौर पर, वैसे तो ये चीज़ पैरेलल भी चल सकती है, लेकिन अगर एक तरह की कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हैं जिसको कि हम एक गोल समझते हैं, चाहे वो पढ़ाई करना और फिर उसके बाद जॉब लेना, या रिश्ता ढूंढना और उसके बाद रिश्ते को निभाना वो है, या दोस्त बनाना और दोस्ती को कायम रखना
जी,
या अपना समाज में नाम एस्टैब्लिश करना, इन सब के बाद एक समय आता है, और खास तौर पे कई बार तो ये साथ साथ भी आ सकता है, जब आप सोचते हैं कि मैं अपनी परिधि से हटकर औरों के लिए क्या करूं।
करेक्ट।
एंड व्हाट वी रियलाइज इज कि एंड ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, या जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें जो प्रत्यक्ष नहीं है वो आपको ज़्यादा खुशी देती
है। ओके।
कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन आपने अगर किसी अपने रिश्तेदार को वहाँ पे रखा, तो वो रखने की खुशी उस बिल्डिंग से ज़्यादा होती है।
ट्रू।
आपके बैंक में बहुत पैसे हैं, वो आपको अपनी पासबुक में दिखता है, लेकिन उसमें से आपने किसी को दान दिया, उस दान का जो उसने इस्तेमाल किया और आपको पता लगा, वो जो है वो आपको ज़्यादा खुशी देता।
Absolutely.
तो ये जो अपरोक्ष चीज़ें हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में, और मैं कहूँगा कि उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें रोज़ हो सकती हैं।
ओके।
स्माइल तो हम रोज़ ही किसी को दे सकते हैं।
बिल्कुल।
अच्छे बोल तो किसी से रोज़ ही बोल सकते हैं, किसी को जो गुण मुझ में हैं वो सिखा सकते हैं, किसी को उसके काम के लिए हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी को आगे जाके मदद करने का प्रॉमिस तो कर ही सकते हैं, और अगर हो सके पॉसिबल तो मदद कर ही सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि समाज के लिए ज़रूरी है, तो उसमें तन मन धन लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि जब हम अपना जीवन वैसे जी रहे हैं तो उसको साथ में अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो जीवन को जीना भी आसान हो जाता है। और किसी स्टेज पे ये गोल जो है
जी,
वो सिर्फ हद के जीवन से बढ़ जाता।
रियली, इज इट पॉसिबल?
नॉट ओनली इज इट पॉसिबल, एक्चुअली अगर आप देखें किसी भी ऐसे व्यक्ति को
जी,
जिसने की दुनिया में किसी प्रकार की छाप छोड़ी है, या जिस व्यक्ति को दूसरे लोगों ने बहुत इज्जत दी है, उसने अपने जीवन में कितने नोट बटोरे उसकी बात नहीं है।
करेक्ट।
उसके कितने मकान है उसकी बात नहीं
है।
लेकिन उसने दूसरों के लिए क्या किया, कितनी इज्जत दी या किसी तरह के कुछ काम किए, वो इम्पोर्टेंट है।
करेक्ट।
एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स एक्चुअली रिलीजन्स भी जो हैं, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस भी यही सिखाती हैं कि आपके रोज़मर्रा के जीवन का कुछ समय या कुछ शक्तियाँ या कुछ परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग्स वो उस चीज़ को हिस्सा बने।
ओके।
एंड मैं ये कहूँगा कि अगर वो लोग जो कि हमारे देश से बाकी देशों में गए हैं,
करेक्ट,
और शायद आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं,
बिल्कुल,
तो अगर वो भी इस चीज़ के साथ जुड़ते रहते हैं तो जहाँ पे उनको कहीं लगता है कि उनकी ज़िंदगी हद तक पहुँची है, वो वहाँ से अपने आप को उठा हुआ महसूस करेंगे।
ट्रू।
और वो वहाँ पर उन वैल्यूज़ को साथ ही साथ जी सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज़ यूनिवर्सल हो सकते हैं।
ट्रू।
वो वहाँ पे उस कल्चर में एक भारतीयता का, भारतीय नहीं, भारतीयता का कल्चर जो है, जिसमें कि वैल्यूज़ या शक्तियाँ या गुण छुपे हुए हैं, वो तो दान कर ही सकते हैं रोज़मर्रा के जीवन में। और वैसा करने से वो अपनी रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़े रह सकते हैं।
ये आपने एकदम सही कहा डॉक्टर साहब। आज का जो ये हमारा जर्नी रहा है, हमने बहुत सारी बातों को रोशनी डाली। हमने जाना कि अगर हमें एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए या एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, जिसमें हम चीज़ों को समझ पाएँ और उनसे कई बार लड़कर लेकिन अपनी जीत को हासिल करें। हमने जाना कि अगर रिलेशनशिप्स में मिठास लानी है, ख़ास करके ये जो हमारा एज ग्रुप है 40 to 60 का, इसके अंदर में हम प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं कि हमने ज़िंदगी को आधा जी लिया होता है, आधे से ज़्यादा जी लिया होता है। तो ऐसे एज ग्रुप में अगर हम समझदारी के साथ में अपने रिलेशनशिप्स के साथ डील करें, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उन्हें नज़रअंदाज करते हुए ज़िंदगी ने क्या क्या दिया है उसके बारे में सोचें, ना कि क्या क्या नहीं दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर हम रहें, लेकिन अगर हमें ये दिमाग में रहे सदा कि हम सकारात्मक तरीके से ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे जीने का तरीका ही क्यों ना हो, कोई भी तरह से हम ज़िंदगी को जब जी रहे होते हैं, अगर उसमें आपका सकारात्मक सोच चल रहा है तो आप जीत चुके हैं। आधी ज़िंदगी भले आपने प्रॉब्लम्स के साथ डील किया, या मैं कहूँगी कि उनको जीता भी, उन पर जीत हासिल की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब आप ऐसे समय पर पहुँचते हैं जहाँ पर आपको पीछे मुड़कर देखना है कि ज़िंदगी में मैंने क्या किया, तब आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को मैं करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।